सब मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आवाज सुनाई दे रही मेरी ना फिर से? आज हम चर्चा करेंगे कृष्ण की एक विशेष लीला के बारे में। जैसे कि हम सब परिचित हैं, हम सब जानते हैं कृष्ण परम भगवान कृष्ण के बारे में। तो कृष्ण का जो वर्णन है वो हमें श्रीमद् भागवतम में प्राप्त होता है, जहाँ से हम भगवान का ये जो ज्ञान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब आने वालों के लिए स्पेस छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास 40 मिनट हैं। कितने मिनट हैं? 40 मिनट। तो हम प्रयास करेंगे सुनने का और कृष्ण का गुणगान करने का। तो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाए गुरु हैया तार यही देश। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। ऐसे कृष्ण जब 500 साल पहले प्रकट होते हैं यहाँ नवद्वीप मायापुर में, तो सारे जगत को एक संदेश देते हैं, और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस भारत भूमि में जन्म लिया है। आज आचार्यगण कहते हैं कि पूरे विश्व की दुर्दशा क्यों है, इसके लिए भारतीय जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है? क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान रूपी अमूल्य निधि है, और वो लोग अज्ञान के अंधकार में जीवन जी रहे हैं। भारत, भा का मतलब है प्रकाश, रत मीन्स जिसमें लगना। तो वास्तव में भारत ये आध्यात्मिक प्रकाश का स्थान है, और जिनके पास भी भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जहाँ, इस भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है उसके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है। अभी इस जगत में हमारा जन्म होता है तो हम बचपन से अंत तक कई जिम्मेदारियां निभाते हैं और कई जिम्मेदारियों से गुजरते हैं। गुजरते कि नहीं? जब हम बच्चे होते हैं तो खेलकूद की जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है, कॉलेज की है, डिग्री लेने की है, फिर ऑफिस की है, फिर परिवार की जिम्मेदारी है, फिर बिजनेस की जिम्मेदारी है, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लेकिन उससे भी ग्रेटर क्या है कि ये जानना हाँ कि मुझे ये बहुत रेयर मनुष्य जीवन मिला है और इसका सही में वास्तविक इस्तेमाल किस चीज के लिए है, ये क्या चीज मुझे दे सकता है। अभी हम बचपन से अंत तक ढूंढ रहे हैं, खोज कर रहे हैं, किस चीज की खोज कर रहे हैं, सुख आनंद एंजॉयमेंट शांति, लेकिन हर जितने भी हमारे प्रयास हैं वो विफल हैं। तो लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जिसने भी भारत भूमि में जन्म लिया है वो व्यक्ति के पास ये आध्यात्मिक ज्ञान की निधि है, भंडार है। और ये आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ है, इन दो ग्रंथों में विशेष रूप से है। हाँ, कृष्ण उपदेश, कृष्ण के उपदेश क्या है, भगवद गीता और दूसरा है श्रीमद् भागवतम। तो भगवद गीता क्या है, भगवद गीता है कृष्ण के इंस्ट्रक्शन, और भागवतम क्या है, अबाउट कृष्णा, कृष्ण के बारे में। तो ये दोनों चीजों को समझना हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अभी हम अपने जीवन में कई प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं सोचते अरे वो जो भी भौतिक ज्ञान है इस शरीर के साथ खत्म होने वाला है कि नहीं। तो हमें जो आध्यात्मिक ज्ञान है जो हर क्षण हमारे काम आता है, व्यवहार में भी आता है और सब प्रकार से हम देख सकते हैं, तो भगवान ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रदान करते हैं। ग्रंथ का मतलब क्या है, जिस जो ग्रंथि है, ग्रंथि मीन्स नॉट गांठ, जो ये नॉट को खोलने में समर्थ है उसे क्या कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। और हम सब किसी नॉट में बंधे हुए हैं, कई प्रकार के नॉट्स बांधते जा रहे हैं अंतिम समय तक, और फिर हमें बहुत अस्वस्थता महसूस होती है लाइफ में और लगता है कि नहीं कुछ और चीज़ चाहिए मेरे जीवन में, कुछ और चीज़ की खोज में हम लगे रहते हैं। तो इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ये उपदेश प्रदान करते हैं और हमें बताते हैं कि इन मेरा ये जो संदेश है उसको समझना कितना आवश्यक है। और वास्तव में भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम का जो संदेश है उसका एक ही सार है। सार क्या है, भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, हे अर्जुन सारे भौतिक धर्मों का त्याग करो और मेरी शरण, एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। लेकिन वो करना बहुत टफ है, कठिन है, कृष्ण बहुत डिमांडिंग है, कृष्ण बहुत डिमांडिंग पर्सनालिटी है, कोई बहुत डिमांड करता है, वर्चस्व दिखाता है, आपको अच्छा लगता है नहीं। लेकिन वही व्यक्ति जब प्रेम की भाषा से बोलता है तब उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, है कि नहीं। तो वही कृष्ण हर क्षमा है वो डिमांड कर रहे हैं, मेरी शरण ग्रहण करो, मेरी पूजा करो। लेकिन वही कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और वो क्या करते हैं, आपनी आचरी भक्ति सिखायो सबारे, वो बोलते नहीं है। दो चीजें हैं, एक बहुत बोलना लेकिन आचरण में कुछ भी नहीं लाना। कुछ लोग होते ना वो बोलते बहुत हैं, आध्यात्म की चर्चा करेंगे, भगवद गीता के श्लोकों का उच्चारण करेंगे, लेकिन भगवान की सेवा की बात आएगी, भगवान की भक्ति की बात आएगी, जीवन में कुछ पालन नहीं करेंगे तो ऐसे लोग निरर्थक हैं। तो क्या है चैतन्य महाप्रभु, क्या है आपने आचरे भक्ति सिखायो सबारे, एक तो खुद आचरण कर रहे हैं और साथ साथ दूसरों को सिखा रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु का कार्यकलाप है, एक्टिविटी है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ये दो संदेशों को हमें प्रदान करते हैं, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। और भागवतम में क्या है, कृष्ण की लीलाएं हैं। हाँ, कृष्ण जो भगवद गीता में सूत्र है उनका विस्तार भागवतम में है। भगवद गीता में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों का त्याग करो और मेरी शरण ग्रहण करो। तो उसके उदाहरण कहाँ मिलेंगे आपको, भागवतम में। अरे सही में कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने परम भगवान की शरण ग्रहण कर ली, परम भगवान को अपना सर्वस्व प्रदान किया और कृष्ण से ही अपनी रक्षा की कामना की, ऐसे हजारों उदाहरण कहाँ मिलते हैं हमें, श्रीमद् भागवतम में मिलते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम सारे शास्त्रों का निचोड़ है, सारे शास्त्रों का सार है। 18 पुराण है, वेद है, उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है, रामायण है, महाभारत है, उसके अलावा इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं, इनको पढ़ने का कलयुग के लोगों के पास कहाँ टाइम है। हाँ, उनको थोड़ा सा कुछ पढ़ना उनके लिए मुश्किल होता है। तो कलयुग के लोग, उनके पास मंद बुद्धि है, एक तो स्मरण नहीं रहता, बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है, तो कैसे इसको समझ सकते हैं। उसके लिए व्यास देव जो भगवान कृष्ण के शक्त्याविश अवतार हैं, वो ये प्रदान करते हैं सारे ग्रंथों का सार निचोड़। हाँ, जैसे हम देखते हैं ना, कोई व्यक्ति बहुत बोलता है, आप कहेंगे नहीं निसार बताओ, जिस कुछ शब्दों में आप बताओ, तो उसी प्रकार से व्यास देव ने सारे शास्त्रों का सार प्रदान किया और वो श्रीमद् भागवतम है। और ऐसे श्रीमद् भागवतम में उन्होंने कृष्ण की जो लीलाएं हैं, भगवान का जो वर्णन है, वो करते हैं विशेष रूप से दशम स्कंद में। और इस श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए कौन था, किसने सुना था श्रीमद् भागवतम? परीक्षित महाराज। अभी जनरली लोग कहते कि हमें क्या आवश्यकता है, व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, मेरे पास अच्छा घर आ गया, अच्छी पत्नी आ गई, मकान आ गया, मेरा नाम सब जगह फैल रहा है, तो मुझे इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके क्वालिफाइड व्यक्ति कौन है? भागवतम को किसने सुना? राजा परीक्षित। और भगवद गीता को किसने सुना? अर्जुन, किंग, पूरे भारत वर्ष के किंग। हम तो छोटे मोटे राजा हो सकते हैं, अपने घर के राजा, अपने एरिया के राजा, फरीदाबाद के राजा, लेकिन यहाँ कहाँ के राजा थे? पूरे भारत वर्ष के, वर्ल्ड के किंग्स थे परीक्षित, अर्जुन। और उन्होंने जाना कि एक्चुअली लाइफ में ये बहुत वैल्यूएबल है, महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। तो ऐसे परीक्षित महाराज को तो श्राप मिला था। हाँ, श्राप मिला कि आपकी 7वें दिन में मृत्यु होगी, और वो भी एक उड़ने वाले जिसको पंख हैं ऐसे तक्षक सांप के द्वारा। और 7वें दिन कितना भयावह है। मैं अभी मुंबई में था लास्ट वीक, वहाँ एक माता जी थी, काफ़ी साल से वो सेवा करती हैं, तो उस दिन उनको बहुत बुखार आया, काफ़ी दिनों से बुखार आ रहा था। तो माता जी ऐसे सेवा करती जा रही थी, तो उस दिन डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा, जोहर टेम्पल में डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कैंसर हो गया है और तुम्हारे पास 8 घंटे हैं। कितने घंटे हैं? 8 घंटे हैं। तुम्हें सबने सुना हमें, तो अब सोचो परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, वो माता जी के पास 8 घंटे बचे थे, उसने क्या सोचा होगा? उसकी जगह हम अपने आप को डाले, उसकी जगह हम सोच रहे थे तो हम क्या करेंगे। वो माता जी बहुत पक्की थी भगवान नाम भक्ति में काफी सालों से, उसने कहा बस अभी 8 ही घंटे बचे हैं, मुझे अभी वृंदावन जाना है, इस शरीर को कहाँ त्यागना है? वृंदावन, किसी हॉस्पिटल आदि में नहीं, भक्तों के बीच में, जहाँ नाम संकीर्तन हो रहा हो, जहाँ तुलसी नजदीक हो, श्रीमद् भागवतम हो, गंगा जल हो, और भगवान के विग्रहों को, पिक्चर आदि को देखकर मैं अपने इस नश्वर शरीर को त्यागना चाहती हूँ। तुरंत उसको ट्रेन में डाला और उनके ब्रदर और कुछ डिवोटीज पूरे ट्रेन में कीर्तन करते हुए, कृष्ण कथा सुनाते हुए उनको लाया। जैसे ट्रेन मथुरा में एंट्री की, उसी क्षण उसने कृष्ण का नाम लेते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज के पास भी थोड़ा समय बचा था, उन्होंने, वो भयभीत नहीं हुए, उन्होंने कहा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं, वो गए सब राजपाट को त्याग कर गंगा के किनारे, और वहाँ मुनियों को उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा गायतः विष्णु गाथा, आप लोग कृष्ण का गुणगान करो, कृष्ण के बारे में बोलो, मैं उनको सुनना चाहता हूँ। और वास्तव में इस जगत में इस कष्टमय स्थिति से मुक्त होने की एक ही मेडिसिन है, एक ही दवाई है, और वो दवाई क्या है? कृष्ण कथा। हाँ, भव औषधि श्रोत्र मनोभिरामान, कि भव का मतलब है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 चीजों को भव कहते हैं। भव ये शिवजी का नाम भी है, इसलिए उनकी पत्नी का नाम क्या है? भवानी है। तो ये दोनों शिवजी और दुर्गा देवी इस भौतिक जगत के कंट्रोलर हैं, उनके अंडर ही भगवान ने सेवा दी है, इसको संभालो। जो लोग भजन में नहीं लगते उनको तड़पा तड़पा के उनको लगाओ, मेरी ओर भगाओ, कष्ट देकर मेरी भक्ति में मग्न कराओ। तो ऐसे परीक्षित महाराज ने कहा, भव औषधि श्रोत्र मनोविरामान, इस भौतिक जगत के ऊपर, इस भौतिक बीमारी के ऊपर, जब भवरोग के ऊपर ये मेडिसिन है कृष्ण के बारे में सुनना। और कहाँ से सुनना? श्रोत्र मनोभिरामान। ये कृष्ण का तो इतनी पावरफुल है, हम केवल कान से सुनते रहे तो वो इफेक्ट डालती है ना। हाँ, इफेक्ट डालती है कान से, और विनम्रता की भावना से भगवान के बारे में सुनना चाहिए। तो ये जो ये महीना है, ये विशेष है, कार्तिक महीना। कौन सा महीना ये? कार्तिक महीना है। और ये कार्तिक महीना श्रीमती राधा रानी का महीना है, और कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। इस महीने में कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी भगवान के लिए कार्य करता है, थोड़ा सा भी अपने आप को डालता है कृष्ण की सेवा करने में, कृष्ण कथा सुनने में, कृष्ण के नामों का उच्चारण करने में, तुलसी की सेवा करने में, तो कृष्ण उसका ये जो कार्य है कभी जीवन में नहीं भूलते। इस संसार में आप किसी के लिए कुछ करो, एक महीने के बाद भूल जाता है। जैसे माता पिता बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे कहते हैं, आप लोगों ने किया है क्या हमारे लिए। तो देखिए, ये संसार की ये रेत है, लेकिन कृष्ण इससे अलग है। कृष्ण देखते हैं कि आपने छोटा सा छोटा कार्य उनके लिए किया है, तो कृष्ण कभी भी नहीं भूलते। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, नेहा विक्रम अनाशोस्ति स्वल्पमप्यश धर्म क्षत्रायते महतो भयान, कि थोड़ा सा सुअल्प, थोड़ा भी कार्य कोई करता है भक्ति का, तो कृष्ण कहते हैं ऐसे व्यक्ति की रक्षा मैं महान से महान भय से भी करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान की कृपा को अनुकूल करने का ये विशेष महीना है कार्तिक, जिसमें आप कृष्ण को अपनी ओर बहुत सरलता से अट्रैक्ट कर सकते हो, कृष्ण को आकर्षित कर सकते हो। तो कृष्ण को कहा जाता है, कृष्ण के बहुत सारे गुण हैं। हाँ, जैसे कृष्ण शब्द का ही अर्थ क्या है, क्यों कृष्ण को कृष्ण कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? सर्व आकर्षक है। क्या है? सर्व आकर्षक है। भगवान का मतलब यह नहीं कि वो एक दो को आकर्षित करेगा, एक ही जाति वाले लोगों को आकर्षित करेगा, एक ही केवल मनुष्यों को आकर्षित करेगा, ऐसे नहीं। भगवान मतलब चर आचर सब प्रकार के जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो ऐसे कृष्ण आकर्षित करते हैं अपनी ओर, कर्षति इति कृष्ण, कृष्ण का मतलब है कर्षति, जो अपनी ओर सबको आकर्षित करते हैं उनको कृष्ण कहा गया है। बल्कि कृष्ण में चार चीजें बहुत इफेक्टिव है, चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो किसी और में नहीं है। क्या है कृष्ण के अंदर? सर्वप्रथम उनका रूप। भगवान कृष्ण सर्वाधिक सौंदर्यवान है, सबसे अधिक आकर्षक है, आकर्षित करने वाले हैं। और दूसरा है, भगवान इतने अधिक आकर्षक है कि भगवान स्वयं अपने रूप से ही वो आकृष्ट हो जाते हैं। कृष्ण जब एक बार गौवे चराने के लिए गए, तो जब जा रहे थे अपने सखाओं के संग में, तो एक गांव गाय का जो खुर होता है, जिसके चिन्ह पड़ते हैं ना मिट्टी में, तो उसमें पानी भरा हुआ था। और भगवान जब जा रहे थे सखाओं के संग में ब्रज भूमि को छोड़कर गोवर्धन की ओर, तो जाते जाते दौड़ते हुए अचानक उनकी दृष्टि नीचे गई, और उन्होंने अपने ही स्वरूप को वहां देखा, और उन्होंने कहा, क्वा चमत्कारिक पुरुषः, ये कौन चमत्कारिक पुरुष है, कौन ये सुंदर है, ऐसा देख रहे थे कृष्ण। और अपने ही ब्यूटी से, अपने ही सौंदर्य से वो आकर्षित हो गए। तो इस प्रकार से आत्म पर्यंत कर्षति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करते हैं उसके अलावा अपने आप को भी आकर्षित करने का सामर्थ्य रखते हैं, वो कृष्ण है। इवन सारे जो हेवेनली प्लैनेट्स की जो रूपवती देवताओं की पत्नियां हैं, देवता हैं, शिवजी हैं, गणेश हैं, दुर्गा हैं, ये सारे देवी देवतागण, इस जगत के सारे जीव कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान के पास ये विशेष गुण है जो किसी और के पास नहीं है, रूप माधुरी जिसे कहते हैं, सौंदर्य। तो ऐसे कृष्ण वृंदावन में प्रकट होते हैं। तो भगवान का इस जगत में प्रकट होने का क्या कारण है? भगवत गीता में स्वयं कृष्ण अपने मुख से कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम्। परित्राणाय, साधुओं का उद्धार करने के लिए, और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनका विनाश करने के लिए। तो भगवान बल्कि आसुरों को मारने के लिए नहीं आते। आसुरों को मारना तो भगवान सुनामी भेज दे, अर्थक्वेक भेज दे, कुछ स्वाइन फ्लू के मच्छर भेज दे तो भी मर जाएंगे लोग, नहीं आसुर, उनको ये स्वयं आने की क्या आवश्यकता है। लेकिन भगवान ये जगत में आते हैं केवल 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 अपने भक्तों के लिए। किसके लिए आते हैं? भक्तों के लिए। और कृष्ण का केवल एक ही बिजनेस है, भगवान का एक बिजनेस है और उनके भक्तों का भी एक ही बिजनेस है, दोनों का एक बिजनेस है, अलग अलग। क्या है? कृष्ण का बिजनेस है केवल अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना, सोघोषम निमज्जान्तम, कि अपने भक्तों को आनंद के सागर में डुबो देना। और भक्तों का बिजनेस क्या है? भक्त सदैव भगवान को आनंद प्रदान करते हैं, हाँ, सेवाओं के माध्यम से, सेवाओं के द्वारा। तो इस प्रकार से कृष्ण वृंदावन में प्रकट होते हैं, तो उनके प्रकट होने के दो प्रमुख कारण हैं। एक है सारे ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करना, और दूसरा, तो थोड़ा सा एक और आप ले सकते हैं ना, दूसरा कारण है कि परम भगवान कृष्ण इस जगत के, नहीं वो रोएंगे, उनको उधर खेला। तो भगवान, उनका दूसरा कारण है कि कृष्ण वृंदावन में कई प्रकार की लीलाओं को करते हैं, और उन लीलाओं के माध्यम से हमारे जैसे जो भौतिक जीव हैं, बद्ध जीव हैं, जो इस सांसारिक कार्यों के प्रति सदैव आकर्षित रहते हैं, उनका आकर्षण अपनी ओर लाने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कृष्ण वृंदावन में लीलाएं करते हैं। तो कृष्ण वृंदावन में लीला करते हैं, एक विशेष लीला। कार्तिक तो क्या है? कृष्ण की सारी लीलाओं से भरा हुआ स्थान है। एक भी दिन ऐसा नहीं है कार्तिक का जिस दिन कृष्ण ने कोई ऐसी विशेष लीला नहीं की हो। कार्तिक का पहला दिन से लेकर अंतिम दिन तक कृष्ण की कई प्रकार की लीलाएं हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में आता है। हाँ, इसी महीने में भगवान ने गोवर्धन उठाया था। आज के दिन क्या है? राधा कुंड का प्राकट्य है। और इसी बीच में दीपावली है, जिस दिन परम भगवान कृष्ण को उनकी माता यशोदा ने बांध डाला था। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं, और इसी महीने में कृष्ण पहली बार गोपाष्टमी बछड़े या गवों को चराने के लिए गए थे। तो ऐसी सारी लीलाएं कार्तिक में है, इसलिए कार्तिक बहुत ग्लोरियस है। कार्तिक वृंदावन का आत्मा है। वास्तव में वृंदावन को अनुभव करना है, हाँ, तो कार्तिक महीने में विजिट करना चाहिए, तब आप देखेंगे कि वृंदावन की क्या महिमा है। तो वृंदावन में कार्तिक में सारे लोग, चाहे देश विदेश, सब जगह से आते हैं और पूरा महीना कृष्ण की सेवा में बिताते हैं, कृष्ण के स्मरण में बिताते हैं, कृष्ण के नाम उच्चारण में बिताते हैं, हाँ, कृष्ण के बारे में कृष्ण कथा सुनने में, पढ़ने में, हाँ, इन सब कार्यों में, परिक्रमा करने में बिताते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण इस कार्तिक में बहुत सरलता से अवेलेबल है। लेकिन उसके लिए क्या मेरी इच्छा है कृष्ण को प्राप्त करने की? क्या हम चाहते हैं भगवान के पास वापस जाना, कि मैं बस अपने यहाँ ही निवास करना चाहता हूँ? हाँ, हमारे पास कितने घर हैं? बहुत सारे घर हैं। पहले तो ये शरीर अपने आप एक घर है जिसके हम अंदर बैठे हुए हैं। एक सूक्ष्म शरीर है, मान बुद्धि अहंकार। हम कौन है? आत्मा है, इस शरीर से परे है। उसके ऊपर एक घर बनाया है, मान बुद्धि अहंकार का कोटेड। फिर उसके ऊपर और एक घर बनाया है, पांच, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का। फिर उसके अलावा हम और भी घर बना रहे हैं, उसके ऊपर कई प्रकार के वस्त्र डाल रहे हैं, उसके बाद और घर है, फिर कारें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब हम चाहते हैं कि क्या क्या एक्स्ट्रा है, क्या जरूरत है वहां भगवान के पास वापस जाने की? लगता है क्या? नहीं लगता। हमें लगता है कि मैं परमानेंट इस जगत में राजा बनने के लिए आया हूँ, है ना? लगता है कि मैं परमानेंट यहाँ निवास करने के लिए आया हूँ। नहीं, कृष्ण आते हैं, हमें बताते हैं, अरे बाबा, ये आपका स्थान नहीं है, आप क्या यहाँ गेस्ट हो। क्या हो? गेस्ट हो, कुछ दिनों के लिए हो। गेस्ट ज्यादा दिन रुकता है? नहीं। तो हम सब गेस्ट है ये जगत में, ये जगत हमारा स्थान नहीं है। हम तो किसी और स्थान से बिलोंग करते हैं। तो परम भगवान आते हैं और वो बताते हैं कि आपका असली स्थान कहाँ है, वृंदावन है, वैकुंठ जगत है, लेकिन हम अभी इतने आसक्त हो गए हैं कि हमें महसूस नहीं होता, जरूरत नहीं है, जरूरत महसूस नहीं हो रही है कि हाँ सही में मुझे कृष्ण के पास वापस जाना है। तो उस जरूरत को महसूस कराने के लिए हमें श्रवण करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, समय निकालकर जप करना चाहिए, धाम में विजिट करना चाहिए भक्तों के संग में, तब पता चलेगा कि अरे मैं वास्तव में अज्ञान का जीवन जी रहा हूँ, मेरी आंखें खुली हैं लेकिन फिर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, है कि नहीं? जैसे कुछ अंधे लोग होते हैं, उनकी आंखें ऐसी खुली रहती हैं लेकिन दिखाई नहीं देता, हमें लगता है कि शायद वो देख रहा है। इसलिए भागवतम के दूसरे स्कंद में वर्णन आया है, पश्यन अपि न पश्यति, व्यक्ति देख रहा है फिर भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी स्थिति है। तो एक प्रकार से हम धृतराष्ट्र के फॉलोअर हैं, है कि नहीं? धृतराष्ट्र के फॉलोअर, हमें किसका फॉलोअर बनना है? अर्जुन का, कृष्ण का, युधिष्ठिर, द्रौपदी, कुंती, इनका फॉलोअर बनना है, ये सब ग्रेट सोल है। तो ऐसे कृष्ण वृंदावन में इस महीने में एक विशेष लीला संपादन करते हैं और सब लीलाओं में वो सर्वश्रेष्ठ लीला है। माता यशोदा कृष्ण को क्या करती है? बांधती है, अपने प्रेम पाश में बांधती है, प्रेम के रज्जुओं से बांधती है। तो उस लीला का वर्णन थोड़ी देर के लिए मैं करता हूँ, आप अटेंटिवली सुनिए, मैं उसके बाद आपको प्रश्न पूछूंगा। क्या पूछूंगा? हाँ, तो आपको ध्यान पूर्वक सुनना है सबको। तो कृष्णा जब वृंदावन की भूमि में प्रकट होते हैं, वृंदावन, वृंदावन को ब्रज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रज, ब्रजती, ब्रजती गाओ, जहाँ गौओं ने, गोपों ने, गोपियों ने, नंद महाराज आदि ने जिस स्थान में भ्रमण किया, उस स्थान को ब्रज भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रज भूमि। जहां जहां ये गए, वो अभी 84 कोस का एरिया है, इसको ब्रज भूमि कहा जाता है। तो ऐसी ये ब्रज भूमि में वृंदावन इसका प्रमुख नाम है। ये वृंदावन नाम क्यों दिया? क्योंकि भगवान को प्रिय कौन है? वृंदा देवी है, तुलसी है, वृंदा, तुलसी का दूसरा नाम वृंदा है। तो भगवान को अपने भक्त इतने प्रिय हैं कि भगवान अपने घर का नामकरण भक्त के नाम से करते। ये संसार में भी लोग घर का नामकरण अपने बच्चों के नाम से करते कि नहीं? अपने पत्नी के नाम से करते, या कोई तो बहुत प्रिय है, जैसे कार के ऊपर भी नाम देते हैं, जो हमें प्रिय है उनका नाम देते हैं। तो भगवान को अपने आप से भी प्रिय कौन है? अपने भक्त हैं। तो इसलिए भगवान अपने धाम का नाम वृंदावन रखते हैं, या जहाँ प्रचुर मात्रा में वृंदा या तुलसी अवेलेबल है। तो ऐसे वृंदावन में 12 वन हैं। कितने वन हैं? 12 वनों में एक वन है सबसे बड़ा, जिसका नाम है महावन, और इस महावन में गोकुल नाम का एक छोटा सा एक स्थान है। तो कृष्ण गोकुल में प्रकट होते हैं और ऐसे गोकुल में कृष्ण 3 साल और 4 महीने के लिए निवास करते हैं, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए महावन गोकुल में, और प्रकट होने के बाद अभी कुछ महीने के नहीं थे तो पूतना, तृणावर्त आदि आसुरों ने आक्रमण किया। तो कृष्ण ने क्या किया? सबने, सब ब्रजवासियों ने सोचा कि ये गोकुल हमारे रहने योग्य स्थान नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए दूसरे स्थान में जहाँ आसुर नहीं आ सकते। तो फिर नंद महाराज और उनके भाई उपनंद आदि ये सब भगवान को लेकर वहां से सारे लोग गोकुल को छोड़ते हैं और आके कहाँ निवास करते? छठीकरा। सबने देखा है छठीकरा, आप ट्रन लेते हो वृंदावन के लिए। तो वहां आकर रुके कई साल, फिर वहां से वो डीग, काम्यवन और फिर नंदगांव में जाके रुके फाइनली। तो ऐसे ये जो लीला है, माता यशोदा ने कृष्ण को बांधा, ये गोकुल में हुई थी। कहाँ हुई थी? गोकुल। तो गोकुल में कृष्ण जब थे तो भगवान जल्दी सोते थे और थोड़ा लेट उठते थे, माता यशोदा उनके साथ स्वयं सोते थे और वो उठती नहीं थी जब तक कृष्ण नहीं उठे हो। तो माता यशोदा जब कृष्ण एक दिन देखा कि आज माता यशोदा को थोड़ी सुबह जल्दी उठी थी, अरे दीपावली का दिन था, बहुत सुबह जल्दी जल्दी उठी माता यशोदा। और फिर वो गई, उठते ही वो सोचने लगी कृष्ण को, उन्होंने मुख कमल को देखा, उनको बहुत दुख हो रहा था कृष्ण को अकेले को छोड़कर। वो गई दूसरे रूम में और अपने वस्त्र आदि को टाइट किया और उन्होंने क्या किया, दधि मंथन करना शुरू किया कि आज दीपावली है और कृष्ण को मैं क्या करूंगी, विशेष मक्खन कई प्रकार की चीजें बनाऊंगी हाँ उनको प्रदान करने के लिए। और बल्कि उनके पास कई सारे ये थे, नौकरानी थे, बहुत सारे काम करने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी माता यशोदा ने किसी और को एंगेज नहीं किया क्योंकि माता यशोदा ने कहा ये मेरा पुत्र है, उनसे इतना प्रेम है तो मैं उसके लिए स्वयं करूंगी। जैसे द्वारका में 16,100 रानियां थी, वो रानियां कृष्ण की सेवा करने के लिए किसी और को एंगेज नहीं करती थी, कुकिंग करना है तो स्वयं करती थी क्योंकि प्रेम। जैसे शास्त्र कहते हैं हाँ, जिनसे प्रेम है उनसे आप उनको कुक करने के लिए आप आलसी नहीं हो सकते कभी भी हाँ। जिन वो एक उर्दू में कहा गया है हाँ, जो दिल में नहीं, जो चूल्हे में वो दिल में, मतलब जिसको लिए आप खाना पकाओगे, जिनसे आप प्रेम रखते हो उनसे क्या करोगे, आप सरलता से कुकिंग करोगे, कभी भी आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि नहीं आज घर वालों के लिए कुकिंग करना है, ऐसा बोलना पड़ता है किसी को नहीं, वो नेचुरल है। तो वैसे ही माता यशोदा ने लगा सोचा कि मुझे, मैं स्वयं करूंगी, ये कृष्ण मेरा क्या है, आत्मा है, कृष्ण के बिना मेरा जीवन नहीं है। तो वो स्वयं ये दधि मंथन करने लगी, बल्कि माता यशोदा के पास ऐसी विशेष गायें थी जो कलरफुल दूध देती थी और उनको माता यशोदा, उन्होंने उन गायों को चुना था और उनको कलरफुल घास खिलाती थी, उनकी स्वयं केयर करते थे। ये सारा कष्ट किसके लिए, कृष्ण के लिए। और भक्ति का मतलब ही है हाँ कि भगवान के लिए कार्य करना हाँ, वो आत्म सुख की इच्छा नहीं रखना कि मुझे क्या सुख प्राप्ति हो रही है हाँ। ये पांडव कृष्ण के लिए कितने भी कष्ट आते थे लेकिन कृष्ण को आनंद देने के लिए उनका लाइफ था। युधिष्ठिर महाराज राजा केवल अपने लिए नहीं बन रहे थे कि मेरा नाम बड़ा होगा, मेरे पास ऐश्वर्य आएगा, नहीं, कृष्ण की ग्लोरीज बढ़ेगी सारे संसार में, इसलिए वो राज पद में थे। तो वैसे ही माता यशोदा स्वयं कृष्ण के लिए कुकिंग ये करने लगी, दधि मंथन करने के लगी, लेकिन अभी उनको दुख हो रहा था। दूसरा कारण आचार्य बताते हैं कि माता यशोदा ने स्वयं इसलिए भी दधि मंथन करना शुरू किया क्योंकि बाकी सारी गोपियां सदैव कृष्ण की शिकायत करती थी। क्या शिकायत करती थी, कि तुम्हारा ये जो बालक है वो आता है हमारे घरों में, वहां रखे हुए दूध दही आदि को चुराता है। तो बल्कि माता यशोदा का इस पर विश्वास नहीं था। और एक बार एक गोपी थी जिनका नाम था प्रभावती, तो प्रभावती ने बहुत सारा दूध दही मक्खन बनाया, बल्कि ये जो बाकी गोपियां ये बनाती थी अपने घर में, बनाते बनाते केवल ये सोचा करती थी कि कृष्ण ने आना चाहिए मेरे पास, मेरे घर में, और चुरा के ले जाना चाहिए, खाना चाहिए, ये इच्छा थी। भगवान को ऐसे नहीं कि घर में वो माता लॉक करके रखती थी दूध दही मक्खन ये सब चीजें, नहीं, लेकिन केवल प्रेम के प्रति रेसिप्रोकेशन आदान प्रदान करने के लिए कृष्ण जाते थे गोपियों के घर में और वहां से दूध दही मक्खन को चुराते थे। तो एक बार कृष्ण जब गए तो उनको पकड़ा, कैसे पकड़ा, रेड हैंड पकड़ा, कैसे पकड़ा, रेड हैंड नहीं, वाइट हैंड, उनका हाथ किस में गया था, दही मक्खन में, तो हाथ रेड थोड़ी होगा हाँ, वाइट हैंड पकड़ा प्रभावती ने, पकड़ा और वैसे पकड़ के अभी ले चलती हूँ यशोदा के पास। कृष्ण डरे हुए थे, कृष्ण किसी और से डरते नहीं हैं, वो अपने भक्तों से डरते हैं हाँ। तो फिर जो प्रभावती उनको ले जा रहे थे और यशोदा के सामने गए, हे यशोदा देखो देखो तुम्हारा ये जो बालक है ये कृष्ण है हाँ, जिनको मैंने आज पकड़ा है, रेड हैंड पकड़ा है। तो अभी माता यशोदा अपने महल से बाहर आई देखने के लिए कि ये प्रभावती जोर जोर से चिल्ला रही है, बोल रही है, और जब वो ऐसे पकड़ के ला रहे थे तो उसका हाथ पीछे था, उसने नहीं देखा पीछे कृष्ण है या कोई और है। तो कृष्ण, उन्होंने कहा, यशोदा ने पूछा कौन है, कहाँ है, कहाँ है मेरा कृष्ण, तो उन्होंने कहा ये रहा, वो कृष्ण नहीं थे, वो कौन थे, उनके पुत्र थे। तो प्रभावती ने देखा, अरे मेरा पुत्र है, तो वो शर्मा गई और कहती भूल हो गई और फिर अपने बालक को उठाया कंधे में रखा और वापस जा रही थी। तो जाते समय वो बालक कृष्ण बने कृष्ण ने कहा हे प्रभावती, आप इस बार मैं तुम्हारा पुत्र बना हूँ, लेकिन अगली बार मुझे ले जाओगी तो तुम्हारा पति बन के साथ आऊंगा। तो इस प्रकार से कृष्ण कई प्रकार का आदान प्रदान करते थे। एक बार कृष्ण को एक गोपी ने पकड़ा जो दूध दही आदि चुरा रहे थे और एक खंभे के साथ खड़ा किया और उनको बांधने लगे, कहते कि मैं आज तुम्हें बांधूंगी। तो उन्होंने एक रस्सी बांधना शुरू किया और बांधते बांधते वो गोपी कृष्ण को बांध ही नहीं पा रही थी। तो वो कहते कि कृष्ण तुम ही बताओ कैसे बांधा जा सकता है तुम्हें। तो कृष्ण कहते अभी मुझे साइड में करो, तुम खड़े हो जाओ। उनको खंभे के पास खड़ा किया, रस्सी से कृष्ण ने गोल गोल बांध डाला, अच्छे से गांठ लगाई, नॉट लगा के कृष्ण ने कहा ऐसे बांधना होता है, और वो चले गए बाहर। इस प्रकार से कृष्ण वृंदावन में इस प्रकार की जो विशेष लीलाओं का संपादन करते हैं केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, और इस आनंद के लिए सारे लोग सुबह से शाम तक अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं। कितनी चीजें हम कर रहे हैं लाइफ में, सब प्रकार का ट्राई कर रहे हैं सुबह से शाम तक, ट्राई कर रहे हैं कि अभी मुझे इस चीज से आनंद मिलेगा, उससे खुशी मिलेगी, उससे संतुष्टि मिलेगी, लेकिन नहीं। जब तक हम कृष्ण भक्ति को, भगवान की भक्ति को नहीं स्वीकारते, गंभीरता से नहीं लेते, उनकी सेवा में नहीं लगते, उनका नामों का उच्चारण नहीं करते, उनके बारे में श्रवण नहीं करते, तो असंभव है। हजारों लोग आए और गए, मैं भी, उन्होंने अपना राजमहल किंगडम खड़ा कर दिया, राज्य खड़ा कर दिया, लेकिन वो आंतरिक रूप से क्या थे, खुश नहीं थे, सुखी नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। तो ऐसे ही कृष्ण वृंदावन में भी इस प्रकार की जब लीलाएं करते हैं, तो माता यशोदा जब कृष्ण को छोड़कर एक और गई, उठकर गई, तो माता यशोदा को बहुत दुख लग रहा था कि कृष्ण सोए हैं और उनको छोड़कर मैं यहाँ आ गई हूँ। तो माता यशोदा बहुत निराश हो गए थे और बहुत उनको दुख लग रहा था। तो उस समय माता यशोदा ने क्या किया, दधि मंथन तो कर रहे थे, लेकिन साथ साथ अपने मुख से वो कृष्ण ने किए हुए कार्यकलापों के गीत को गा रहे थे, और मन में सदैव यही सोच रहे थे कि कृष्ण ने जो, जैसे ही कृष्ण उठेंगे मैं उनको बहुत अच्छा मक्खन खिलाऊंगी। तो इसका मतलब क्या है कि माता यशोदा अपना मन, अपना शरीर, अपनी वाणी, सब कुछ किसके सेवा में उन्होंने मग्न किया था, कृष्ण की सेवा में मग्न किया था। तो ये यशोदा माता का विशेष गुण है, विशेष गुण है यशोदा माता का। तो ऐसी यशोदा माता जब ये मंथन करने में बिजी थी, तो उसी समय कृष्ण उठ जाते हैं, और जैसे ही कृष्ण उठते हैं तो देखते हैं कि अरे मेरी माता नहीं है मेरे पास। उनको बहुत दुख लगता है। फिर वहां से वो आते हैं, चल के आते तो देखते हैं कि माता यशोदा मंथन कर रही हैं। आकर जो मथनी है मंथन करने वाली, उसको पकड़ लेते हैं। तो यशोदा माता समझ जाती है कृष्ण चाहते हैं कि मैं उनको गोद में ले लूं। हाँ, तो कृष्ण तुरंत यशोदा माता उनको गोद में ले लेती हैं और उनको स्तनपान कराना शुरू करती हैं। भगवान को बहुत भूख लगी थी। भगवान को भूख इन चीज़ों की नहीं, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान को आप्तकाम या आत्माराम कहा जाता है। उनको कोई बाहर की चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, वो अपने संतुष्टि के लिए, अपने आनंद के लिए। तो ऐसे कृष्ण को जब वो स्तनपान करा रहे थे, उसी समय मार कृष्ण सोच रहे थे, देखो मैं कितना महान हूँ। कृष्ण को बहुत घमंड आ गया, अहंकार, गर्व आ गया। तो जैसे भगवान की एक खासियत है, भगवान किसी का गर्व या घमंड सहन नहीं करते। भगवान जो प्राइड है, घमंड है, उसको चूर चूर करने में एक्सपर्ट है। किसी का भी भगवान सहन नहीं करते, और भगवान का भी जो घमंड है वो भक्त सहन नहीं करते, वो भी भगवान के घमंड को चूर चूर कर देते हैं। तो जब कृष्ण सोच रहे थे कि मैं कितना महान हूँ, हाँ, माता यशोदा की मथनी को मैंने रोका और मेरी सेवा में उसको लगाया, तो उस समय यशोदा माता ने देखा कि सामने दूध उबल रहा था, और उस दूध उबल रहा था, दूध गिरने वाला था नीचे बर्तन से। माता यशोदा कृष्ण को उठाती है, एक और रखती है और दौड़ते हुए जाती है, हाँ, उसको बचाने के लिए, उस दूध को बचाने के लिए। जैसे यशोदा माता कृष्ण को साइड में रखती है, वहां भागती है, तो कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है। हाँ, कृष्ण बहुत एक प्रकार से क्रोधित हो जाते हैं। और माता यशोदा क्यों गई थी वहां, वहां दूध को बचाने के लिए? ऐसे नहीं कि माता यशोदा के घर में दूध की कमी थी, ऐसा नहीं था। उनके पास तो 9 लाख गायें हैं, अनलिमिटेड दूध है, लेकिन वो दूध किसी के किसके लिए है? कृष्ण के लिए, और वो विशेष प्रकार का दूध है। तो ऐसी माता यशोदा उस दूध को बचाने गई, बल्कि वो दूध क्यों बाहर गिर रहा था? इसलिए गिर रहा था कि अरे ये कृष्ण सारा माँ का ही दूध पी लेगा, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं कृष्ण की सेवा के काम में नहीं आऊंगा, इसलिए अच्छा है कि आत्महत्या कर लेता हूँ, फायर में, आग में अपने आप को जला डालता हूँ। ये भावना है दूध की। आध्यात्मिक जगत में सारी चीजें हैं, जो वस्तु भी हैं, मिल्क भी हैं, वो सारे क्या हैं? चल हैं, चित हैं, मतलब लाइफ है उनमें। जैसे माता यशोदा जब राइस कुकिंग करते थे, तो जैसे जनरली देखा जाता है कि किचन में श्रेया राइस रखती हैं और बार बार जाके देखती रहती। आजकल तो कुकर आ गए, लेकिन जाके देखते ना, कवर करो और देखो अभी पक गया कि नहीं, पक गया कि नहीं। वहाँ ऐसे नहीं, यशोदा माता ने राइस रखा, वो जाती है बाहर, गोपियों के संग में बातें करती हैं, कृष्ण का बारे में बोलती रहती है, और वहाँ से बोलेगी, हे राइस तुम पक गए हो क्या? तो वो कहेगा हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। तो यह है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, जहाँ बोलना बोलना नहीं, वहाँ बोलना क्या है? गाना है। तो वहाँ चलना क्या है? नृत्य है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है। यह हर चीज दुखमय है, यहाँ बोलना भी दुखमय है, चलना भी दुखमय है, सब कुछ दुखमय है। तो फिर वो एक दूध भी सोच रहा है, मेरे जीवन का क्या लाभ, मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर पाऊंगा। उस दूध से हमें सीखना चाहिए, मेरे ऐसे जीवन का क्या लाभ कि ये शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है, इसका इस्तेमाल मैं कृष्ण की सेवा में नहीं कर सकता। हाँ, बल्कि हमें घृणा होनी चाहिए, हमें तड़पना चाहिए। तो फिर कृष्णा सोचते हैं, माता यशोदा मुझे छोड़ के गई, पटक के गई, अभी इसको सिखाता हूँ कि मैं कितना बड़ा शरारती हूँ। उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर या कुछ लिया, जिसको सुबह से माता यशोदा जिनके लिए मंथन कर रही हैं, इतना शारीरिक लेबर कर रही हैं, उसी को कृष्ण क्या करते, तोड़ डालते उस मटके को, तोड़कर वहाँ दूसरे रूम में जाते हैं। वहाँ बहुत दूध दही आदि टंगा हुआ था, एक उखल लेकर उसके ऊपर खड़े होकर उसको भी तोड़ते हैं, बंदरों को खिलाते हैं, खुद खाते हैं और भयभीत रहते हैं। तो माता यशोदा वापस यहाँ आती, देखती है अरे ये किसने तोड़ा होगा, तो वो समझ जाती किसने तोड़ा है, कृष्ण ने। हाँ, वो ये समझ जाती हैं। और फिर अभी वो सोचती हैं कि मैं अभी इसको सिखाऊंगी, इसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जैसे कई बार बच्चे बहुत शरारत करते, माँ कहती तुम्हें ना स्कूल में सिखाया नहीं जाता ठीक से, तो भगवान का एक नाम पुरुषोत्तम है। क्या नाम है? पुरुषोत्तम का मतलब जो पुरुष में उत्तम है, परम है, क्वालिफाइड है, जेंटल है, सभ्य है। तो वैसे माता यशोदा ने सोचा कि इसको दूसरा नाम नहीं पढ़ना चाहिए, पुरुष अधम नहीं होना चाहिए, ये ट्रेनिंग नहीं लेगा मुझसे, सीखेगा नहीं, ये पुरुषोत्तम नहीं बनेगा, अभी तो बालक है ना, आगे जाकर उनका नाम पुरुषोत्तम हुआ। तो माता यशोदा एक छड़ी लेती है अपने हाथ और कृष्ण को ढूंढने लगती है। जब जाती है तो देखती है दूर से कृष्ण को, और कृष्ण वहाँ मक्खन आदि को जिस प्रकार से चुरा रहे थे, जैसे जो चोर होता है उसको 2 आंखें नहीं होती, उसको 1000 आंखें आती, वो चारों ओर देखते रहता है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। कृष्ण ऐसे ही चारों ओर देख रहे थे, भयभीत थे कि कोई आएगा तो नहीं, माता यशोदा तो नहीं आएगी। माता यशोदा बहुत धीमे धीमे कदम डालकर वहां पहुंची, पहुंचती तो वहां देखती है कि कृष्ण इस और उत्पटांग हरकत कर रहे हैं। माता यशोदा गई उनको पकड़ने, तो कृष्ण दौड़ रहे हैं। कृष्ण दौड़ेंगे कहाँ? मेन गेट से बाहर। जैसे कोई व्यक्ति बच्चा कोई शरारत करता है तो वो सोचता है, ऐसे अकेले स्थान में नहीं छुपता कई बार, क्योंकि वो अकेले माँ मिलेगी तो उसकी चटनी बना देंगे ना, पिटाई करती रहेगी, लेकिन वो जहाँ घर के सारे लोग हैं उनके बीच में जाएगा तो पिताजी कहेंगे मत मारो, बहन कहेगी मत मारो ना, सब लोग रोकेंगे। तो वैसे ही कृष्ण ने सोचा, अभी माँ के हाथ में छड़ी है, और कृष्ण ने अभी तक पहली बार माता यशोदा के हाथ में छड़ी देखी, आज तक माता यशोदा ने छड़ी उठाई नहीं थी। आज कृष्ण ने कहा कुछ सीरियस मामला है, आज कुछ विशेष होने वाला है मेरे साथ, तो फिर कृष्णा दौड़े बाहर, आंगन से बाहर गए तो सारी गोपिकाएं, ब्रज की गोपिकाएं बाहर थी उनके पुत्र आदि के साथ, छोटे छोटे जो ग्वाल सखा हैं। कृष्ण को लगा अभी मैं सेफ हूँ, अभी मेरी रक्षा होगी, अभी मैं बचूंगा। लेकिन माता यशोदा आज बिल्कुल गर्म हो गई थी। माता यशोदा दौड़ी और कृष्ण को एक हाथ पकड़ा और एक हाथ में छड़ी ऐसी उठाई तो कृष्ण रोने लगे। कृष्ण के आंखों में जो काजल लगाया था माता यशोदा ने, कृष्ण एक हाथ से वो पोंछने लगे अपने आंसुओं को और सोचने लगे आज मेरी माता को हुआ क्या है। हर बार जब भी मैं रोता हूँ तो आंख मैं नहीं पोंछता, हर बार आंख को आंसू कौन पोंछता है, मेरी माता पोंछती हैं। लेकिन आज कृष्ण को स्वयं को ही अपने आंसुओं को पोंछना पड़ रहा था। तो फिर कृष्ण बहुत डर गए, माता यशोदा ने डांटा, उन्होंने कहा हे अशांत हो तुम तो बंदर की तरह उठपटांग हरकतें करते हो, डांटा। और उन्होंने देखा कि अभी भयभीत हो गया है भगवान कृष्ण। जिनको ये सूर्य भयभीत रहता है इसलिए टाइम में उगता है कि नहीं उगता। हम टाइम में ऑफिस जाए या ना जाए, घर के काम टाइम में करे या ना करे, लेकिन सूर्य उदित होता है। समंदर अपनी सीमा को लांघता नहीं है। इस प्रकार से सारे जो देवतागण है वो भगवान से भयभीत रहते हैं, लेकिन वही भगवान किन से भयभीत है, यशोदा माता से भयभीत है। तो ऐसी यशोदा माता से वो भयभीत है। और फिर माता यशोदा ने सोचा कि अभी मैं तुम्हें दंड दूंगी, और क्या दंड था, आज मैं आपको बांध के रखूंगी। तो उन्होंने जिस मथनी से वो मंथन कर रही थी उसकी रस्सी छोड़ के लाई, लाकर कृष्ण को बांधना शुरू किया। तो कृष्ण बंधे ही नहीं जा रहे थे, फिर उसने और रस्सियाँ लाई, फिर गोपियाँ सारी हंस रही थी आज क्या हो गया यशोदा को। वो सारी बाहर की गोपियों ने अपने अपने घरों से रस्सियाँ ला के दी, बांधो। तो माता यशोदा सोचने लगी, उनको दो आश्चर्य लगे कृष्ण को बांधने में। एक था कि रोज इस बालक को मैं नहलाती हूँ, सुलाती हूँ, कपड़े पहनाती हूँ, इसकी कमर की साइज तो इतनी है, मेरे हाथ में आती है, लेकिन आज क्या हो गया है, इतनी बड़ी बड़ी रस्सियाँ हैं, कई किलोमीटर की लंबी लंबी रस्सियाँ, ये छोटी पड़ रही है। और छोटी मीन्स कितनी छोटी, हर बार दो उंगलियां छोटी। माता यशोदा का ये दो आश्चर्य थे, आज कमर इतनी बड़ी क्यों है। ऐसे नहीं कि कृष्ण की कमर बिल्कुल ऐसी फुटबॉल की तरह बड़ी हो गई, नहीं, साइज उतना ही था। लेकिन भगवान की जो शक्ति है जिसको कहते हैं विभू शक्ति, विभू मीन्स बड़ा और अनु मीन्स छोटा, तो भगवान की जो एक शक्ति है पोटेंसी विभू जो उनके कमर में थी, जिसके कारण जितनी रस्सियां बांधो वो छोटी पड़ते थे। तो माता यशोदा बहुत प्रयास करने लगी, पसीना छूटने लगा माता यशोदा को, उसने कहा आज इसको बांध के ही रखूंगी। तो फिर माता यशोदा का प्रयास देखा भगवान ने, और जब सरल प्रयास, सिंसियर प्रयास देखा तो कृष्ण ने अपनी कृपा की, जिसके द्वारा क्या की कर पाई माता यशोदा, बांध पाई। तो ये दो चीजें हैं भगवत भक्ति में, एक तो है प्रयास करना, एंडेवर करना, सीरियसली सिंसियरली, सदैव जब तक हमारे पास सांस है, जब तक ये शरीर में शक्ति है, तब तक भक्ति करने का सदैव क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, हमें गंभीरता से लगे रहना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। और फिर भगवान देखते कि अरे ये व्यक्ति सिंसियर है, ये रियली सरल है, मेरी सेवा करना चाहता है, प्रयास कर रहा है, हाँ, तो फिर भगवान अपनी कृपा देते। ये दो उंगलियां हैं, एक उंगली क्या है, प्रयास, और दूसरा क्या है, कृपा। जब हमारा प्रयास होगा तो कृष्ण कृपा करेंगे। इस प्रकार से भगवत भक्ति बहुत सरल है, कृष्ण को प्रसन्न करना बहुत सरल है। इस जगत में, इस संसार में किसी को प्रसन्न करने में लाइफ टाइम बीत जाता है, फिर भी प्रसन्न नहीं होता, खुश नहीं होता, हाँ, लेकिन उतना प्रयास, उतना एंडेवर आप कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हो तो आपके आपके लाइफ में परफेक्शन अचीव कर सकते हो, हम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। जब भगवान के प्रति अपने हृदय में प्रीति या प्रेम अफेक्शन हाँ डेवलप कर सकते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी कृष्ण ने इस कार्तिक महीने में दी है। तो ये कार्तिक महीना विशेष है जिसमें आप कार्यरत हो सकते हैं। कार्तिक में शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को पांच कार्य करने चाहिए, एक तो है कार्तिक में जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए कार्तिक में, और उठकर क्या करना चाहिए, भगवान के नामों का जाप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिक में भगवान के नामों का जप सुबह उठ के करना चाहिए और एक्स्ट्रा माला करनी चाहिए। और दूसरी चीज है कार्तिक में तुलसी की सेवा करनी चाहिए अधिक से अधिक। हम तुलसी का नया रोपण करना चाहिए या तुलसी किसी को दान में देनी चाहिए, ये बहुत ग्लोरियस है। तुलसी को जल देना, तुलसी को मंजरिया तोड़ना, उसके उसका ध्यान रखना जैसे आप अपने बच्चे का ध्यान रखते हो वैसे। तुलसी तुलसी भक्ति देवी है, तुलसी भगवत भक्ति देने वाली है, तो इस प्रकार से तुलसी की सेवा करनी चाहिए। और तीसरा है दीप भगवान को अर्पण करना चाहिए रोज अपने घर में, दीप दान। कृष्ण को बहुत प्रिय है, कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति मुझे एक बार भी दीप अर्पित करता है तो उसके अल्प या करोड़ों जो पाप के रिएक्शन है वो खत्म हो जाते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है पाप कर्म, क्योंकि हमारा जीवन पाप में ही चला जाता है। रोज कितने प्रकार के पाप हम करते हैं जानते और अनजाने में। तो दीप अर्पण करने से कृष्ण के प्रति आप अपना प्रेम बढ़ा सकते हो। और श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए या कृष्ण के बारे में पढ़ना चाहिए या कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए। कार्तिक में शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण की लीलाओं को पढ़ना चाहिए कृष्णा पुस्तक से। जब आप कार्तिक में श्रीमद् भागवतम या कृष्ण लीला को पढ़ते हो तो आपको सारे जो ये 18 पुराण है उनको पढ़ने का लाभ प्राप्त होता है। और भगवान आपके ओर आकर्षित हो जाते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत सरल माध्यम है कार्तिक का। और जो व्यक्ति इस कार्तिक का मौका गंवाता है उसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए ये कार्तिक बड़ा बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो जो हम सरलता से कृष्ण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और रोज जो सत्यव्रत मुनि द्वारा लिखित दामोदर अष्टकम है, ये प्रार्थना है, उसका उच्चारण करना चाहिए। उस प्रार्थना को जब कृष्ण सुनते हैं तो उनका हृदय पिघलने लगता है। जो व्यक्ति उस प्रार्थना का उच्चारण करता है कृष्ण उसकी ओर दौड़ने लगते हैं और वृंदावन धाम को विजिट करना। तो इस प्रकार से कार्तिक में इन चीजों को करने का प्रयास करना चाहिए। सारांश क्या है कि कार्तिक में अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य करो, अपने समय को गवाओ मत। चाणक्य पंडित ने कहा लाइफ में करोड़ों करोड़ों रुपए भी आप दोगे तो जीवन में बीता हुआ कल आपके पास नहीं आ सकता। आपके पास कितने लाखों रुपए क्यों ना हो, हम ला सकते बीता हुआ एक घंटा, कल का जो हमारा यूथफुल शरीर है वो ला सकते हैं नहीं, तो हम वास्तव में विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए है, आध्यात्मिक जीवन को हमें गंभीरता से लेना चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। लोग कहते अरे टाइम नहीं जा रहा है, कितने लोगों से मिलो, है ना, उनको पता ही नहीं करना क्या है लाइफ में, टाइम नहीं जा रहा है। हम कहते हमें टाइम कम पड़ रहा है 24 घंटे, इतना कुछ है करने के लिए, लाइफ इतना छोटा सा है, 24 घंटे इतने ऐसे चले जाते कि पता ही नहीं चलता, करने के लिए इतना कुछ है। और वो सारी चीज़ें क्या है, आनंद देने वाली चीज़ें हैं, इन सब को आप करते हो। अभी संसार में व्यक्ति बहुत सारे कार्य में मग्न है और वो परेशान होता रहता है। तो इसलिए ये कार्तिक महीने में आप अपने आध्यात्मिक प्रैक्टिस को बढ़ाओ। और जैसे दीपावली में मॉल्स में डिस्काउंट या सेल लगता है ना 50%, 20%, 30%, तो ये कार्तिक भी वही है। भगवान ने क्या है, डिस्काउंट, भक्ति में डिस्काउंट है, सेल लगा हुआ है। थोड़ा सा भी कृष्ण का सेवा करो, थोड़ा सा भी हरिनाम लो, कृष्ण तुरंत आपके हो जाते हैं। हाँ, तो आज राधा कुंड का भी प्राकट्य है, तो उसके लिए तो टाइम नहीं हमारे पास वर्णन करने के लिए, लेकिन आज के दिन ही राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ था कृष्ण के द्वारा, ठीक है। तो राधा कुंड और श्याम कुंड, कृष्ण को अभी जाना था, कहाँ, मथुरा जाना था वृंदावन को छोड़कर। तो उससे पहले कृष्ण ने कुछ आसुरों को मारा था, एक थे केशी आसुर, एक थे व्यमासुर, और फाइनली एक आसुर आए थे जिनका नाम था अरिष्टासुर। ये अरिष्टासुर बैल के रूप में आया था। ये अरिष्टासुर, ये जो बलराम है, बलराम को जैसे उस लीला में भी बलराम, वो जब माता यशोदा कृष्ण को बांध रहे थे तो वहाँ कृष्ण बांधते हुए चिल्ला रहे थे कि हे रोहिणी, हे बलराम, मुझे बचाओ। कौन बांध रहे हैं, यशोदा भाभी। वहाँ उसी दिन बलराम और जो रोहिणी माता है वो उपानंद के घर चले गई थी कुछ फेस्टिवल के लिए, और वहां कोई बचाने वाला नहीं था। फिर संध्या के समय में जब बलराम वापस आया कृष्ण को मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कृष्ण कृष्ण क्या हो, किसने बांधा तुम्हें? हाँ, तो कृष्ण बहुत रो रहे थे और बलराम ने कहा किसने बांधा तुम्हें, मुझे बताओ, मैं वही लक्ष्मण हूँ, मैं अनंत शेष हूँ, जिसने बांधा है उसको मैं मार डालूंगा, जला डालूंगा, नाश कर दूंगा, ऐसे बलराम बोलते जा रहे थे, मतलब अपने आप को बता रहे थे कि मैं पावरफुल हूँ। तो फिर एक बच्चा आके छोटा सा कहते हैं उनको ना माता यशोदा ने बांधा है, तो चुप हो गए, शांत हो गए। फिर वो कृष्ण के पास गए, देखो मैं बोल रहा था, कितनी हरकतें क्यों करते रहते हो, ठीक है वो मटका तोड़ दिया, फिर से जाकर वहां भी क्यों तोड़ा? तो फिर कृष्ण जोर से रोने लगे, जैसे रोने लगे इनको फिर से दया आई, कोई जोर से रोता है तो हृदय थोड़ा पिघलता है, फिर से बलराम के अंदर दया आई, बलराम गए, उन्होंने कहा अभी बताता हूँ यशोदा माता को, गए यशोदा माता के पास, यशोदा माता आप जानती हो कि कृष्ण ये जो मैं कौन हूँ, साक्षात लक्ष्मण हूँ और मैं अनंत शेष हूँ, ऐसे यशोदा माता को बोलते जा रहे। उन्होंने कहा और बताओ कौन हो तुम, तो ऐसे बलराम बोल रहे थे, तो कहते कि तुम्हें इतना नहीं पता ये जो कृष्ण ये कोई सर्वसामान्य बालक नहीं है, यही जिन्होंने हिरण्यकश्यपु को मारा था, यही है हाँ जिन्होंने रावण का वध किया था। तो ऐसे सब बोल रहे थे तो माता यशोदा बहुत गुस्से में आ गई, उन्होंने कहा सारे भगवानों को मेरे घर में स्थान मिला, इनको किसी और जगह कोई घर नहीं मिला किसी और का। तो फिर से बलराम गए, फिर दोनों रोने लगे, कोई सोल्यूशन नहीं, माता यशोदा ने कहा जो छोड़ेगा उसकी उसको भी बांध लूंगा, और कृष्ण को तो छोड़ने वाले नहीं थे। तो ऐसे बलराम हमेशा सोचते थे ये कृष्ण ना हमेशा बांसुरी रखता है और क्या यूज करता है, मोर पंख। उन्होंने कहा मुझे भी एक दिन चाहिए इनका पहनने के लिए, तो उन्होंने एक दिन कृष्ण से लिया, और कृष्ण उस दिन गवे चराने नहीं गए थे, तो ये पहन के गए, और उसी दिन ये अरिष्टासुर आया था, और कंस ने कहा था, कंस ने पूछा उस बालक का वर्णन बताओ क्या है, उस कंस ने कहा था कि उस बालक के पास दो चीजें हैं, एक तो बांसुरी है और दूसरा सदैव मोर पंख रहता है उसके टर्बन में। तो फिर अरिष्टासुर आया तो ये बलराम थे, इनको नहीं पता, तो उन्होंने क्या किया, देखा कि यही है शायद वो बालक, अपने दोनों पावन से उसको मारा, बलराम बहुत दूर जाके गिर पड़े, बलराम तुरंत कृष्ण के पास गए, कृष्ण ये ले लो आपका बांसुरी ले लो और ये मोर पंख ले लो, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर कृष्ण आते हैं उस वन में, बहुला वन, जो राधा कुंड है वो बहुला वन में आता है, 12 वनों में एक वन है। तो वहां जब कृष्ण आए तो ये अरिष्टासुर आया था एक बैल के रूप में, बहुत ही भयावह, फिर कृष्ण उसको मारते हैं, डिटेल में वो वर्णन है कृष्णा पुस्तक में, आप ये सब लीलाएं पढ़ सकते हो। तो जब कृष्ण उसको मारते हैं तो ये जो गोपिकाएं हैं राधा रानी और सखिया ये सब कहती हैं कि हे कृष्ण आज हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो कृष्ण ने कहा क्यों क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, एक गाय का वध किया है, अभी बैल भी गाय के कैटेगरी में आता है, और जो गो हत्यारा है वो बहुत बड़ा पापी है, आपसे हम वार्तालाप नहीं करेंगे और आपसे कोई संबंध नहीं रखेंगे, आपको तीर्थों में सारे ब्रह्मांड के सारे तीर्थों में स्नान करना होगा। तो कृष्ण ने कहा वो तो असुर था, राक्षस था, हाँ मैंने गाय का या बैल का हत्या नहीं की है, लेकिन फिर भी गो राधिका ने कहा कि वो था तो गाय के वंश में ही तो बैल, हाँ तो फिर कृष्ण ठीक है मैं करता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, हाँ जो गंगा है, गंगा तीनों लोकों में है, गंगा जब स्वर्ग में बहती है तो उसको मंदाकिनी कहते हैं, वही गंगा जब इस जगत में आती है तो उसको गंगा या भगीरथी जाह्नवी ये नाम है, और यही गंगा जब नीचे जाती है पाताल लोक में तो उसको भोगवती कहते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है मुझे कोई आवश्यकता नहीं है सारे तीर्थों में स्नान करने जाने की, सारे तीर्थों को मैं यहाँ बुला लेता हूँ। तो भगवान ने अपनी एड़ी से पाँव से जोर से मारा और एक गड्ढा तैयार किया और सारे तीर्थों को यहाँ आमंत्रण दिया। सारे तीर्थ तो भगवान की सेवा के लिए हैं, गंगा जमुना ताम्रपर्णी कृष्णा गोदावरी सरस्वती आदि अलग अलग जो सागर है सबका जल उसमें आने लगा, और वो स्वयं और पर्सनिफाइड वो जो व्यक्ति है वो सब खड़े हो गए, भगवान ने उसमें स्नान किया तो राधा रानी का विश्वास नहीं हो रहा था। तो भगवान ने उन सारे तीर्थों को प्रकट करवाया। फिर राधा रानी को कृष्ण कहते, देखो मैंने तो स्नान कर लिया, लेकिन अभी आप लोग दूषित हो गई हो। आप लोगों ने क्या किया है, एक एक जो आसुर है उसकी साइड ली है आपने। ये साइड लेने मात्र से आप लोग क्या हो, दूषित हो। तो पाप लगा है आपको भी, और आप लोगों को स्नान करना होगा। कृष्ण ने कहा, देखो मैंने बनाया कुंड ना, ये कृष्ण कुंड, इसी में स्नान करो ना। राधा रानी कहते, नहीं हम अपना कुंड बनाएंगे। ये सारे गोपिकाएं श्रीमती राधिका, इन्होंने अपने कंगन निकाले और कुछ ही क्षणों में कुंड बनाया। तो उसको कंगन कुंड ओरिजिनली वो नाम आता है। छोटा सा कुंड बनाया। फिर कृष्ण ने कहा, यहाँ से पानी ले लो। कहते, नहीं नहीं हम पानी कहाँ से लाएंगे, गोवर्धन के पास जो मानसी गंगा है वहां से जल लाएंगे। तो सारे गोपियों ने लाइन बनाई, मटके से पानी ला रहे थे। अभी कितना पानी लाएंगे कुंड को भरने के लिए, बेचारी थक गई, पसीने पसीने निकलने लगे। और उन्होंने कहा, आपसे अभी तो नहीं होगा। तो कृष्ण कहे, कृष्ण ने उन सारे तीर्थों को कहा कि आप क्या करो, आप वो श्रीमती राधिका मेरी तो बात नहीं मान रही है, आप लोग जाओ और कहो कि हमारी सेवा स्वीकार करो। तो गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी, क्षीर सागर, ताम्रपर्णी, ये सब तीर्थ जाते हैं। और राधिका को कहते हैं कि हमारा जीवन आपकी सेवा के लिए है, आप क्यों वहाँ से जल ला रहे हैं, हम स्वयं आपके कुंड में आते। तो फिर वो उनसे वो सेवा स्वीकार करती है और फिर वो कुंड बनता है, राधा कुंड। तो कृष्ण कहते हैं कि हे श्रीमती राधिका, तुम जिस प्रकार से मुझे प्रिय हो, वैसे ही ये कुंड भी मुझे क्या है, बहुत अधिक प्रिय है। और कृष्ण, राधा रानी भी कहती हैं, ये कृष्ण कुंड भी मुझे बहुत अधिक प्रिय है। तो अब जाते हो गोवर्धन के पास, राधा कुंड और श्याम कुंड है, तो वहाँ दोनों के अंदर स्पेस है, एक दूसरे का पानी जाता है दोनों में। तो कृष्ण कहते कि जो व्यक्ति राधा कुंड की सेवा करता है, तो मैं उसको प्रेम प्रदान करता हूँ, जिस प्रकार का प्रेम मेरे लिए श्रीमती राधा रानी के हृदय में है। इस प्रकार से राधा कुंड काज प्राकट्य है, इसको बहुला अष्टमी कहा जाता है। बहुला नाम की एक गोपी थी कृष्ण की सेवा में, या बहुला नाम की एक गाय भी थी, वो एक लीला आती है। तो इस प्रकार से राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य होता है। तो ये विशेष स्थान है, और जहाँ वैष्णवगण जाते हैं और राधा रानी की सेवा करते हैं। राधा रानी का द्रवित रूप है वो, राधा कुंड क्या है, राधा रानी का द्रवित रूप, द्रव जल से युक्त जो रूप है वो राधा कुंड है। तो इस प्रकार से राधा कुंड भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वैष्णव के लिए। श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है, और जैसे कि हम सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद को अपने गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने वहीं आज्ञा दी थी, जब वो युवक थे, वहाँ कहा था कि तुम्हारे पास धन आए तो तुम ग्रंथों को छापो, पुस्तकों को छापो और उनका वितरण करो। तो वो ऑर्डर, वो जो ऑर्डर है, प्रभुपाद ने बहुत सीरियसली ली थी, और पूरे विश्व में प्रभुपाद ने ग्रंथों को छापा और उनका वितरण किया। इस प्रकार से राधा कुंड की हम सेवा कर सकते हैं, हम श्रील प्रभुपाद की सेवा करके। इस प्रकार से राधा कुंड का प्राकट्य इस जगत में हुआ है आज के दिन। हरे कृष्णा। कार्तिक मास के यशोद दामोदर के श्रील प्रभुपाद की राधा कुंड आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के निताय गौर प्रेमानंदे।